नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंता सीट से भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द, महाधिवक्ता की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप, 16 जिले हीट वेव की चपेट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए सहायता के मानदंडों में संशोधन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। श्री मीणा 12 की अंता सीट से विधायक थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीणा के मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर के बाद ये कार्रवाई की। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई। गौरतलब है कि साल 2005 में सरपंच के चुनाव के दौरान तत्कालीन उपखंड अधिकारी को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में विधायक मीणा पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद मनोहर थाना में सरेंडर कर दिया था। वे अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया को हराकर विधायक बने थे। श्री मीणा मनोहर थाना से भी विधायक रह चुके हैं। श्री मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद अब 12 जिले की अंता सीट खाली हो गई है। राज्य विधानसभा में अब 199 सदस्य रह गए हैं। मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाधिवक्ता की रिपोर्ट प्राप्त होते ही ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
सारे कानूनी पहलुओं का अध्ययन और कानूनी राय देने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। उसके तहत कंवरलाल मीणा के मामले में भी हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई। इस मामले में मैंने पहले भी कहा था कि एजी से राय ली जा रही है। एजी विधानसभा का पदेन कानूनी मामलों के अंदर सदस्य होता है। उसके तहत हमने एजी को रेफर किया। ऐसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई। उसके 15-20 मिनट बाद ही आज प्रातःकाल 10:30 पर यह निर्णय फाइल पे ले लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। राज्य में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। हनुमानगढ़, बाड़मेर, पाली, करौली, चूरू में गर्म हवा के थपेड़ों से लोग दिनभर परेशान रहे। श्रीगंगानगर में आज भी लू और प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल रहे। वहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि झुलसाने वाली गर्मी के कारण दिन में सड़कों पर आवाजाही काफी कम है।
बदन झुलसाने वाली गर्मी का दौर लगातार जारी है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कें भट्टी की तरह तपने लगी हैं। लगातार तापमान और गर्म हवाओं के चलते प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा के तहत चिकित्सा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों से समन्वय के लिए हीट एक्शन प्लान के तहत कार्य आवंटित किए हैं। इसी तरह पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों को दोपहर के समय अत्यावश्यक होने पर ही घरों से निकलने और इस दौरान भी सूती कपड़ों से बदन ढकने और लू से बचाव के लिए जारी निर्देश की पालना की अपील की गई है। नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। गर्मी में लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जिला मुख्यालय पर अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर प्याऊ भी बनाई गई है। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा निराश्रित गोवंश और अन्य जीव जंतुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था की जा रही है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
16 जिले प्रचंड गर्मी और हीट वेव की चपेट में रहे। बीते 24 घंटों में 7 शहरों बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी, वनस्थली, फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर मापा गया। हालांकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में आंधी और हल्की बरसात हुई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उदयपुर कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में दोपहर बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों और शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज दोपहर के समय जैसलमेर में तापमान 43.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और स्टीवी हीटवेव की परिस्थिति अभी भी अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी रहेगी। वहीं शेखावटी क्षेत्र और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। दौरान तेज आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना के कामों को गति देने के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 और अलवर जिलों में 1102 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के तहत बनाए जा रहे रामगढ़ और महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना में बैराज निर्माण से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया है। इस निर्णय के अनुसार 12 जिले के किशनगंज, छबड़ा, छीपाबड़ौद और अलवर जिले में गैर वन भूमि वन विभाग को निःशुल्क आवंटित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है। आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की अचूक सूचना तथा सशस्त्र बलों द्वारा घातक कार्रवाई के कारण यह संभव हुआ है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है। श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ दुनिया का सर्वोच्च सीमा सुरक्षा बल है।
बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। चाहे चुनाव कराना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद का सामना करना, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है।
राष्ट्रीय लोक दल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए देश के सैन्य बलों का अभिनंदन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे सैन्य बलों के मजबूत हौसलों और देश के सक्षम नेतृत्व की वजह से ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने जातिगत जनगणना संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय की भी सराहना की। इस मौके पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी का काडर बनाया जाएगा।
एक एक जिले में जाकर हम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे, उसके बाद 7 संभाग है, 7 संभाग में हम जाएंगे और फिर नीचे 200 विधानसभा स्तर के बाद में हम बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करने के बाद में एक हम बड़ा कार्यक्रम अभी आगामी जून के माह में श्री जयंत चौधरी जी का प्रदेश स्तरीय एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम जयपुर में रखेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी दिखेगी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज कई जिलों में तिरंगा यात्राओं की धूम रही। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उधर दौसा के महुआ में विधायक राजेन्द्र मीणा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें धर्मगुरुओं, पूर्व सैनिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि तथा आम जन ने भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्तिपूर्ण नारों से सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। श्रीगंगानगर और भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में भी तिरंगा यात्राओं की धूम रही। जगह जगह फूल बरसाकर इन यात्राओं का स्वागत किया गया। जयपुर के कलाकार चंद्र प्रकाश गुप्ता देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की स्मृतियों को चित्रों के माध्यम से अमर कर रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान इस मुहिम की शुरुआत की थी। अब तक वे सैकड़ों शहीदों के परिजनों को चित्र भेंट कर चुके हैं। चित्रकार गुप्ता ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से अपनी कला के माध्यम से शहीदों को चित्रमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
शहीदों के लिए कोई मेरा अभियान है, ये पिछले 26 सालों से निरंतर जारी है। 1999 के अंदर करगिल युद्ध के टाइम से मैंने राजस्थान के 74 सैनिक शहीद हुए थे करगिल के अंदर। उन सबों के चित्र बना के मैंने उनके गांव गांव में देने गया। मैं पूरे राजस्थान की मैंने यात्रा करी है। राजस्थान का ऐसा कोई सा एक कोना नहीं है कि जहां मैं शहीदों को पोर्ट्रेट देने पहुंचा नहीं। सब गेहूं मैं सारे गांवों के अंदर मैंने पूरे गांवों की यात्रा करी है। उनके परिवारों के साथ मिला हूं मैं, उनके परिवारों के साथ में खड़ा रहा हूं मैं। उसके बाद के अंदर पुलवामा के अंदर जो शहीद हुए थे उनको भी देने गया हूं मैं। तो ये मेरा एक तरह से मेरे रच बस गया है मेरे जीवन के अंदर कि इन शहीदों के लिए मैं जी रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि उन परिवारों को क्या मैं स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी समाज में बहुत ज्यादा। उनको ये कहना चाहिए कि देश का नागरिक, देश का समाज और सब हमारे साथ खड़े हैं।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए सहायता योजना के मानदंडों में संशोधन किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद नया ओलंपिक चक्र शुरू हुआ है। ऐसे में बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर मानदंडों की समीक्षा की गई। वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा के समर्थन के लिए यह समीक्षा की गई। मंत्रालय ने ट्रेनिंग, बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरणों की खरीद और एथलेटिक कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े कार्यक्रमों की बढ़ी लागत को ध्यान में रखा है। संशोधित योजना में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली निधि का कम से कम 10% कोच और तकनीकी कर्मचारियों के लिए आवंटित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंता सीट से भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द। महाधिवक्ता की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप, 16 जिले हीट वेव की चपेट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए सहायता के मानदंडों में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।